नमस्कार श्रोताओं, मैं सुरभि यादव और आप सुन रहे हैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोबाइल वाणी के ओर से परीक्षा की तैयारी कैसे करें कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और आज इसी बीच हमारे बीच उपस्थित है शासकीय हाई स्कूल माध्यमिक विद्यालय भीमाल गोंदी के शिक्षक प्राचार्य जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका मोबाइल वाणी पर स्वागत है। सर्वप्रथम सर, आपका शुभ नाम हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
मैं पीवी देशमुख, शासकीय हाई स्कूल भीमाल गोंदी।
सर, जैसे कि अभी 6 फरवरी से 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चालू हो रही है, ऐसे में आप विद्यार्थी को ऐसा क्या रणनीति, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं हो सकता है कि सिलेबस बच्चों का कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो ऐसे में वो बच्चे क्या रणनीति अपनाए कि जिससे वो अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सके?
हाँ, इस साल थोड़ा सा एग्जाम 1 महीना पहले से होने के कारण कोर्स तो कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन अब रिविजन चालू है
जी।
त्रैमासिक और अर्धवार्षिक पर फोकस किया था, उसके आधार पे हमने ग्रेडिंग की थी बच्चों की
जी।
जो जो ए में आए, बी ग्रेड में, सी और डी और ई में जो फेल है उनके अलग ग्रुप बनाए थे उस, और उसके बाद शासन के तरफ से हमको हॉट स्पॉट मिले थे, गैस पेपर मिले थे, उसका हम अध्ययन करा रहे हैं। और इसके पश्चात अभी शासन ने तैयारी के लिए पेपर के सेट दिए थे ए और बी, उसको सैंपल दिए थे, उसको हमने पोर्टल से निकाल के बच्चों को दिए, उनसे लिखवाए, पहले हमने समझाया उनको, उसके बाद उनको लिखवाए। इस प्रकार से तैयारी चल रही है और उनको मोटिवेट करते हैं हम लोग कि अच्छा रिजल्ट कैसे आए, आगे फ्यूचर में क्या करना है, करियर गाइडेंस के रूप में बताते हैं, तो मोटिवेशन के बाद थोड़ा बच्चे पढ़ना।
जी सर, सर मैं एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी, इस बार जो है परीक्षा के पैटर्न में काफी बदलाव आया है पिछले साल से,
हाँ,
उससे संबंधित बच्चों को कुछ गाइडलाइंस अगर आप देना चाहेंगे पेपर किस तरह से पैटर्न आएगा और कैसा आपको सॉल्व करें तो थोड़ा।
हाँ, इस साल क्या हुआ है, उन्होंने पहले यूनिट के आधार पर अंक डिस्ट्रीब्यूट थे कि इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसके 2 अंक रहेंगे, इसके 3। इस साल उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पूरे जितने भी अध्याय हैं उनसे कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 2 नंबर के आ सकते हैं, 3 नंबर के और 4 नंबर के आ सकते हैं, तो इस प्रकार से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बच्चों के लिए ये हो गया कि अब उनको पूरा कोर्स ही पढ़ना है, हमको भी पूरा पढ़ाना है कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा ये नहीं मालूम हमको। तो अभी क्या हुआ, 30 अंक का तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है उनके
जी,
और उसके बाद 24 नंबर के 2 नंबर के आ रहे हैं जो ऑब्जेक्ट गुण को किसी की विशेषता है, परिभाषा है, सूत्र है, इसके बारे में पूछेंगे 2 अंक का। फिर 4 अंक के 4 क्वेश्चन 3 अंक के आएंगे
जी।
और उसके पश्चात जो जो भी तैयारी छात्र करेगा तो हम फोकस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव और 2 अंक के ज्यादा करें, इसी प्रकार से हम लोग करवा रहे हैं।
जी सर, सर आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की, हमारे उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थी जो श्रोता है उनको ये समझ में आया होगा। और एक अंतिम प्रश्न सर, क्योंकि परीक्षा का माहौल रहता है, बच्चों के साथ साथ जो अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन पे ज्यादा तनाव रहता है क्योंकि उन्हें बच्चों से ज्यादा उनको चिंता होती है, तो ऐसे में आप उन माता पिता को क्या संदेश देना चाहोगे कि वो, क्योंकि काफी ज्यादा देखा जाता है कि परीक्षाओं के बीच में बच्चों पे काफी तनाव करते हैं, पढ़ने के लिए काफी ज्यादा फोर्स करते हैं, ऐसे में बच्चा पढ़ नहीं पाता, फिर उसका परिणाम गलत आता है, तो फिर कहीं ना कहीं गलत कदम की ओर बच्चे कभी बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में उन माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहोगे किस तरह से वो परीक्षाओं में उनका सहयोग कर सके?
पालक शिक्षक संघ की मीटिंग में हम लोग पालकों को यही बताते हैं कि आप लोग फोकस करें, बच्चों को केवल प्रेरित करें, किसी प्रकार का उन पे तनाव ना आए, ये एक अपेक्षा मत रखें कि ये हमको 90% ही लाना है या 90% ही चाहिए, वो बच्चा जितना एबल होगा उतना ही कर पाएगा, उससे ज्यादा वो करेगा नहीं। फोकस हम लोग स्कूल में करते ज्यादा, अब हमारा दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पे पालक ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, तो जो कुछ है हम ही लोग हैं, और बच्चों को तनाव का तो सवाल ही नहीं उठता इस बेल्ट में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर कंपटीशन की भावना हमको उनमें लाना पड़ता है। वो घर से नहीं बोलते उनके माता पिता कि बेटा तेरे को किस स्ट्रीम में जाना है, हम लोग उनको बताते हैं कि बेटा आपको, आप इतना परसेंट है तो आपको किधर जाना चाहिए, कहाँ फ्यूचर आपका अच्छा है, तो अधिकांश बच्चे यहाँ के तनावग्रस्त नहीं रहते हैं, हम लोग उनको क्लास में ही इतना कर लेते हैं कि वो स्कूल में आके ही अच्छा पढ़े, टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, माँ बाप पूरे खेतीहर हैं, वनोपज से अपने जीविका चलाते हैं, इसलिए जो कुछ है हम लोग ज्यादातर कर लेते हैं उनको।
जी शुक्रिया सर। और सर एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे माता पिताओं को उतनी समझ नहीं है शिक्षा के प्रति, और यहाँ पे स्कूल काफी यहाँ पे दुर्गम क्षेत्र में भी आता है, तो ऐसे में क्या प्रशासन से आपकी कोई उम्मीद है, मतलब कि कोई आप गुजारिश करना चाहेंगे जिससे और यहाँ के स्कूल की व्यवस्था बेहतर हो सके, और बच्चे और यहाँ के क्षेत्र में और अच्छा विकास हो सके।
अभी
स्कूल
प्रशासन
है
इसको अपडेट करके हायर सेकेंडरी के तरफ डॉक्यूमेंट्स गए हमारे सर नारायण जी सर ने भी यहाँ से भेजे थे शुरू में,
जी।
और शासन की ये मंशा है कि यहाँ पर हायर सेकेंडरी हो। तो यहाँ से जब लगभग 8-10 किलोमीटर से बच्चे पैदल आते हैं, बरसात में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम शासन से यही चाहेंगे कि थोड़ा यहाँ पे हायर सेकेंडरी हो जाए। स्टाफ तो पर्याप्त है हमारे पास,
जी
बच्चे भी आना चालू हो जाएगा, थोड़ी एक क्रांति आ जाएगी एजुकेशन में।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती वक्त निकाले और हमारे साथ में विचार और जो समस्या थी वो रखी, इसके लिए थैंक यू। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना हाई स्कूल भीमाल गोंदी के प्राचार्यों को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने बच्चों को मोटिवेटेड करते हैं और क्या कैसे तैयारी करवाते हैं। साथ ही में एक प्रशासन से ये भी गुजारिश की है कि चूंकि ये क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र में आता है, यहाँ पे उतनी रुचि नहीं है और बच्चों की संख्या भी काफी लगभग सर कमी है, तो उम्मीद है कि प्रशासन इस समस्या पे ध्यान देंगी और कारगर उपाय निकालकर खोजेगी। धन्यवाद।